अन्वय ने उसे हिदायत दी थी या धमकी, आन्या को ये समझ नहीं आया। उसने चिढ़कर उस कागज़ को अच्छे से क्रश करके फेंक दिया और गुस्से से बोली, समझता क्या है ये खुद को, होता कौन है मुझे ऑर्डर देने वाला और मैं क्यों मानूं उसकी बात। उसी ने तो कहा था कि हम बस रूममेट हैं, उससे ज़्यादा कोई अहमियत नहीं है मेरी उसकी ज़िंदगी में, तो अब ये सब क्यों कर रहा है। मैं नहीं मानूंगी उसकी कोई बात, मैं वही करूंगी जो मेरा मन करेगा। वो दनादन किचन में पहुंची। राजमा की खुशबू उसे अपनी ओर बुलाने लगी, पर उसने मन मारते हुए मुंह घुमाकर खुद को समझाते हुए कहा, नहीं आन्या, तुझे उसका बनाया हुआ कुछ छूना भी नहीं है, वो अभी तेरा दुश्मन है, भूल मत। फिर उसने अपनी ही बात का विरोध करते हुए कहा, नहीं, वो तो मैं बस उससे थोड़ी सी नाराज़ हूँ, दुश्मन थोड़ी ना है वो मेरा, वो तो बस उसने मुझे बाकी लड़कियों के बराबर अहमियत दी, इसलिए मैं नाराज़ हूँ उससे। यही तो आन्या, वो तेरे साथ रहता है और उसने तुझे एक झटके में आम लड़कियों के बीच लाकर खड़ा कर दिया, तुझे दोस्त तक नहीं कहा, फिर से अजनबी बना दिया, ये तो सरासर धोखा हुआ तेरे साथ, तो उसका बनाया हुआ कुछ भी नहीं छुएगी। पर इस बात का खाने से क्या लेना देना है, मैं भी तो बनाती हूँ, तो वो भी तो खाता है, तो मैं भी उसका बनाया खा सकती हूँ, अगर नहीं खा सकती तो टेस्ट तो कर ही सकती हूँ, वो तो है ही नहीं, तो उसे कैसे पता चलेगा कि मैंने खाया है या नहीं। आन्या ने खुद ही दोनों तरफ से सोचा और आखिर में अपने दिल को समझाकर उसने चम्मच उठाया और थाली के ऊपर वाली प्लेट को हटाकर एक चम्मच राजमा टेस्ट किया। उसकी आंखें बंद हो गईं और वो मुंह में पानी लाते हुए बोली, इट्स डिलिशियस, एक और बार टेस्ट करके देखती हूँ। आन्या ने मुस्कुराकर कहा और एक और चम्मच राजमा टेस्ट किया। उसके बाद क्या होना था, उसकी नाराज़गी दम दबाकर भाग खड़ी हुई और वो स्लैब पर बैठकर मज़े से राजमा चावल खाने लगी। एक अलग ही संतुष्टि थी उस वक्त उसके चेहरे पर। उसने कुछ ही मिनट में पूरी प्लेट खाली कर दी, फिर मुस्कुराकर बोली, वाओ यार, ये अकड़ू तो राजमा बड़ा स्वादिष्ट बनाता है, मज़ा ही आ गया आज तो। इतना कहकर उसने खाली प्लेट को देखा, फिर आंखें बड़ी बड़ी करके बोली, पर मैंने तो उसका बनाया खाना खा लिया, इसका मतलब मैंने उसकी बात मान ली, नहीं ये नहीं हो सकता, पहले ही घमंड से अकड़ी गर्दन लिए घूमता रहता है, अगर उसे पता चला कि इतना नाटक करने के बाद तूने वही किया जो उसने कहा था तो और सीना चौड़ा करके घूमेगा तेरे सामने। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, मैं उसे पता ही नहीं चलने दूंगी कि मैंने उसके बनाए राजमा चावल खाए हैं, मैं उसके जैसे ही राजमा चावल बनाकर वापस इस प्लेट में रख दूंगी। आन्या ने खुद ही अपनी समस्या का समाधान निकाल लिया, फिर लग गई अपने काम में। उसने राजमा चावल बनाकर उसे पहले जैसे ही रख दिया और ग्लास में पानी लेकर बाहर चली गई और बिस्तर पर बैठकर लग गई अपने काम में। वहीं दूसरी तरफ अन्वय को हमेशा से जंगल के शांत वातावरण में सुकून मिलता था। आज फिर वो बड़े शौक से उस घने जंगल में बड़े बड़े पेड़ों के बीच घास पर लेटा हुआ था। एक बाँह सर के नीचे थी, दूसरी उसकी आँखों को ढके हुए थी। एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए वो बड़े सुकून से सो रहा था। वहीं उससे कुछ दूरी पर एक काला साया बैठा हुआ था। अन्वय दोपहर से यूं ही लेटा हुआ था। रात की 8 बज गए तब भी वो ना ही उठा ना ही हिला, यूं ही लेटा रहा, तो वो साया अचानक ही गायब हो गया। उसे गए हुए कुछ ही पल हुए थे कि अन्वय को अपने सर पर किसी के ममता भरे स्पर्श का एहसास हुआ। इसके साथ ही उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ पड़ी, क्या हुआ है आज हमारे बेटे को, बहुत परेशान लग रहे हैं आप, किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। आवाज़ सुनकर अन्वय ने एक झटके में अपनी आंखें खोल दी और सीधे उठकर बैठते हुए बोला, आप यहाँ क्या कर रही हैं। उसके सामने अनामिका जी बैठी थी और अन्वय उन्हें देखकर कुछ हैरान हो गया था। अनामिका जी ने उसका सवाल सुना तो प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, हमें पता चला कि आज हमारा बेटा बहुत परेशान है तो हम आपके पास आ गए। मैं परेशान नहीं हूँ, मुझे सुकून चाहिए था इसलिए मैं यहाँ आया था, और आपने यहाँ आकर मेरे सुकून के पलों में खलल डाल दी है। अन्वय ने मुंह के हाथ को अपने सर तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया और नाराजगी के भाव से उन्हें देखते हुए उठकर खड़ा हो गया और जाने लगा। अनामिका जी की मुस्कान फीकी पड़ गई, वो भी उठकर खड़ी हो गई और पीछे से उसे देखते हुए बोली, फिर से हमसे मुंह फेर कर जा रहे हैं, हमारा कसूर तो बता दीजिए अन्वय, आपके जन्म से हम तरसते आए हैं अपने बेटे को अपने सीने से लगाने के लिए, कुदरत ने हमारे साथ ऐसा खेल खेला कि आपको हमने जन्म तो दिया पर अपने सीने से लगाकर एक बार आपको प्यार तक नहीं कर सके, माँ बने पर उसका सुख नहीं मिला हमें, हमने कितनी बेसब्री से इंतज़ार किया था उस दिन का जब आप 18 के हुए थे, सोचा था उसके बाद हमें हमारा बेटा मिल जाएगा, पर आपने हमारी ममता को ठुकरा दिया, अपने अस्तित्व को मानने से इनकार करते रहे, नहीं चाहते थे आप कि हम आपके सामने आए, तो नहीं आए हम दोबारा आपके सामने, सब्र करके रह गए कि वो दिन ज़रूर आएगा जब आप हमें अपनी माँ मानेंगे और लौट आएंगे हमारे पास,
पर अब सब्र भी हमारा साथ छोड़कर जा रहा है। उम्मीद की एक किरण भी नहीं नजर आ रही हमें। बताइए हमें, क्या हमारे इस इंतजार का कोई अंत है, या आप हमें हमेशा यूं ही अपनी याद में तड़पाना चाहते हैं? हमारे लिए ना सही, अपने समुदाय के लिए आ जाइए वापस। आप उनके सम्राट हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों से ऐसे मुंह कैसे फेर सकते हैं? आपका इंतजार जल्दी ही खत्म होगा। बहुत जल्द आऊंगा आपके पास। बस कुछ काम करने रहते हैं, उन्हें खत्म कर लूं। उसके बाद इंसानों की इस दुनिया में रहने की कोई वजह नहीं रह जाएगी मेरे पास। अन्वय ने इतना कहा और हवा की तरह वहां से गायब हो गया। उसकी बात सुनकर अनामिका जी के चेहरे पर खुशी और हैरानी के मिले जुले भाव उभर आए। वो भी वहां से तेज गति से गायब हो गई।